एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया का सफर करेंगे जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा है, जहां तर्क के मायने बदल जाते हैं।
हाँ, हम बात कर रहे हैं लुईस कैरोल की कालजयी रचना एलिसेज एडवेंचर्स इन वंडरलैंड की।
और लेखक लुईस कैरोल यानी चार्ल्स लटविज डॉडसन, वो खुद भी तो एक पहेली जैसे थे।
बिल्कुल, एक तरफ ऑक्सफोर्ड के गणितज्ञ, एकदम नियम कायदों वाले, और दूसरी तरफ
ऐसी कहानियां लिखने वाले जो नियमों को तोड़ती हैं, खासकर उस विक्टोरियन दौर में जब बच्चों की कहानियां मतलब
उपदेश देने वाली होती थी, सीधी सादी नैतिकता। कैरोल ने वो सब बदल दिया।
हाँ, तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अजीब सा सफर है एलिस का, ये लिटरेरी नॉनसेंस जिसे कहते हैं, यह हमें क्या सिखाता है।
और इसकी शुरुआत भी तो बड़ी प्यारी है, वो 1862 की एक दोपहर।
हाँ, वो नाव वाली कहानी।
जी, जब डॉडसन ने एलिस लिडिल और उसकी बहनों के लिए ये कहानी घड़ी और फिर एलिस के कहने पर ही इसे लिखा।
सोचिए जरा, एक बच्ची की वजह से दुनिया को ये मिला।
बिल्कुल, और 1865 में जब छपी तो बहुत पसंद की गई क्योंकि ये अलग थी, एकदम ताज़ा।
तो कहानी शुरू होती है, एलिस नदी किनारे बैठी है अपनी बहन के पास और बोर हो रही है।
हाँ, क्योंकि बहन की किताब में न चित्र हैं न संवाद, बच्चे बोर तो होंगे ही।
और तभी उसे कुछ दिखता है, एक सफ़ेद खरगोश।
लेकिन वो कोई आम खरगोश नहीं, वास्कट पहने हुए।
जेब से घड़ी निकाल कर देख रहा है और बड़बड़ा रहा है, अरे अरे मुझे देर हो जाएगी।
बस एलिस की जिज्ञासा जाग गई, एक बोलने वाला कपड़े पहने खरगोश, वो उसके पीछे भागी
और पहुंच गई एक खरगोश के बिल तक और उसमें कूद गई।
लेकिन वो बिल, वो नीचे गिरना, वो भी बड़ा अजीब है, मतलब एकदम धीमा, जैसे कोई सपना हो। दीवारें आलमारियों और तस्वीरों से सजी हैं।
हाँ, ये गिरना ही जैसे कहानी का पहला बड़ा संकेत है। ये सिर्फ नीचे गिरना नहीं है, ये एक अलग ही यथार्थ में, वंडरलैंड में उतरना है।
बिल्कुल, जहां नियम बदल जाते हैं और एलिस जो अपनी विक्टोरियन समझ और तर्क लेकर आई है,
उसे अब इस नई बेतुकी दुनिया से निपटना है। पहला पड़ाव आता है वो हॉल, जहां बहुत सारे दरवाजे हैं
और एक छोटी सी सुनहरी चाबी जो एक खूबसूरत बाग का दरवाजा खोलती है। पर
एलिस दरवाजे से गुजरने के लिए बहुत बड़ी है। यहीं से शुरू होता है वो आकार बदलने का खेल।
हाँ, वो मुझे पियो वाली बोतल, मुझे खाओ वाला केक, कभी वो इतनी छोटी हो जाती है कि
अपने ही आंसुओं के तालाब में तैरने लगती है।
और वहां उसे चूहे और दूसरे जानवर मिलते हैं और वो अजीब सी कॉकस रेस होती है
जिसमें सब जीतते हैं, कोई मतलब ही नहीं उस दौड़ का।
बिल्कुल, ये वंडरलैंड के तर्क का पहला नमूना है, सब कुछ बेतुका।
तो ये जो आकार बदलना है बार बार, ये सिर्फ एक जादुई चीज तो नहीं लगती क्यों?
हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बड़े होने की प्रक्रिया है, खासकर वो जो टीनेज होती है ना।
हाँ, जब समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, शरीर बदल रहा है, पहचान बदल रही है।
वही एलिस बार बार खुद से पूछती है, मैं हूं कौन? ये सवाल जैसे पूरी किताब में गूंजता है, वंडरलैंड का हर कोना उससे यही पूछता है।
और इसी सवाल को और गहरा करता है वो कैटरपिलर।
हाँ,
मशरूम पर बैठा, हुक्का पीता हुआ।
हाँ,
बड़ा गंभीर सा। वो सीधे पूछता है एलिस से, तुम कौन हो?
ये तो बहुत सीधा सवाल है।
हाँ, लेकिन एलिस के लिए मुश्किल,
क्योंकि वो खुद ही नहीं जानती, उसका जवाब बदलता रहता है। कैटरपिलर उसे मशरूम के बारे में बताता है,
इससे वो अपना कद कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि पहचान पर काबू पाना अपने हाथ में है।
हाँ, कुछ ऐसा ही, और वो सलाह भी देता है, अपना आपा मत खोना।
मजेदार बात है कि वो खुद बड़ा चिड़चिड़ा लगता है।
यही तो वंडरलैंड है, सलाहें अजीब जगहों से आती हैं। कैटरपिलर जैसे एक द्वारपाल है, वो एलिस को आगे के लिए तैयार करता है।
इसके बाद वो पहुंचती है डचेस के घर, वहां तो और भी हंगामा है।
उफ़, वो घर, रसोईया हवा में काली मिर्च उड़ा रही है, सब छींक रहे हैं, बच्चा
सुअर बन जाता है।
और वहीं मिलती है चेशायर बिल्ली, वो मुस्कुराती हुई बिल्ली जो गायब हो जाती है,
सिर्फ मुस्कान रह जाती है हवा में। कमाल का पात्र है वो
वंडरलैंड के तर्क या कहें अतर्क का प्रतीक है। उसकी बातें पहेली जैसी, विरोधाभासी,
जैसे वो कहती है हम सब यहाँ पागल हैं।
हाँ, ये बहुत गहरा वाक्य है, क्या ये सच है? या ये कहना कि जब दुनिया ही ऐसी हो तो सामान्य क्या है?
वो एलिस को एक तरह से रास्ता दिखाती है कहती है कि किधर भी जाओ पागल लोग ही मिलेंगे,
और उसे भेज देती है मैड हैटर की तरफ।
हाँ हाँ, पागल चाय पार्टी शायद सबसे यादगार हिस्सा।
यकीनन, एक चाय पार्टी जो कभी खत्म नहीं होती क्योंकि वक्त शाम के 6 बजे पर अटक गया है।
और हैटर, माच है, डॉर्माउस, उनकी बातें, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं।
अंतहीन पहेलियां जिनका जवाब नहीं, ऊटपटंग बातें। ये सामाजिक रस्मों पर, खासकर विक्टोरियन चाय पार्टियों पर जबरदस्त कटाक्ष है।
एलिस बेचारी तो फंस जाती है वहां। वो कोशिश करती है बात करने की, लेकिन
नियम इतने अजीब हैं कि वो नाकाम रहती है। उसे ताने सुनने पड़ते हैं। ये उसके लिए बड़ा निराशाजनक अनुभव है।
लेकिन पाठक के लिए बड़ा मजेदार और सोचने पर मजबूर करने वाला। कैरोल जैसे भाषा की सीमाओं को दिखा रहे हैं।
हाँ, भाषा का ये खेल पूरी किताब में है। वो श्लेष, शब्दों के मतलब उलट देना, जैसे मॉक टर्टल अपनी पढ़ाई के बारे में बताता है।
हाँ, रीलिंग और राइडिंग की जगह रीडिंग और राइटिंग, शिक्षा व्यवस्था का मजाक।
बिल्कुल। तो चाय पार्टी से निकलकर एलिस आखिरकार उस बाग में पहुंच जाती है।
लेकिन वहां भी अजीब नजारा है। ताश के पत्ते वाले माली
सफेद गुलाबों को लाल रंग रहे हैं, रानी के डर से। और तभी एंट्री होती है दिल की रानी की, क्वीन ऑफ हार्ट्स।
आते ही चिल्लाना शुरू, उसका सिर कलम कर दो।
हाँ, वो रानी कम और एक तरह का अंधा, तर्कहीन गुस्सा ज्यादा लगती है। डर से राज करती है वो।
और उसका क्रॉकेट का खेल, वो भी तो अजीब है।
अरे पूछिए मत, गेंद की जगह जिंदा है झोग, मारने वाले डंडे जिंदा फ्लेमिंगो। ये सत्ता का मनमानापन दिखाता है।
एलिस का रानी से सामना कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। पहली बार वो सीधे ऐसी ताकत से टकराती है जो डरावनी है।
पर वो सिर कलम कर दो वाला आदेश वो सुनता तो है बार बार, पर असल में होता कुछ नहीं लगता।
हाँ, ये भी एक इशारा है शायद कि ऐसी सत्ता दिखने में भयानक है पर अंदर से खोखली हो सकती है। या ये बच्चों को बड़ों का गुस्सा जैसा लगता है वैसा दिखाया गया है।
बिल्कुल। और फिर आता है क्लाइमैक्स, दिल के गुलाम का मुकदमा,
जिस पर रानी के टाट चुराने का इल्जाम है।
और वो मुकदमा, वो तो न्याय का मजाक है। राजा जज है पर बेअसर, गवाह अजीबोगरीब, सबूत का कोई मतलब नहीं।
और रानी का हुक्म, सजा पहले फैसला बाद में।
लेकिन यहाँ एलिस बदल चुकी है। वो पूरी कहानी में जैसे बड़ी हो रही थी, अब वो शारीरिक रूप से भी बड़ी हो रही है।
हाँ, उसका आत्मविश्वास लौट आया है।
हाँ, जब उसे गवाह बनाया जाता है तो वो डरती नहीं, वो रानी और राजा को चुनौती देती है।
और फिर वो पल आता है जब वो चिल्लाती है,
तुम ताश के पत्तों के झुंड के सिवा कुछ नहीं हो।
ये कमाल का क्षण है। ये उसका आत्मबोध है। उसने वंडरलैंड के भ्रम को तोड़ दिया।
और जैसे ही वो ये कहती है, सारे पत्ते उस पर हमला करते हैं और
वो जाग जाती है नदी किनारे अपनी बहन की गोद में। सब एक सपना था,
या शायद सपना नहीं। कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, हकीकत और सपने में फर्क क्या है।
तो अगर हम मुख्य विषयों पर नजर डालें, पहला तो साफ है, बड़े होने की चुनौतियां।
हाँ, वंडरलैंड जैसे बचपन और वयस्क दुनिया के बीच का पुल है। वो आकार बदलना, वो पहचान का संकट, मैं कौन हूँ,
ये सवाल तो आज भी उतना ही जरूरी है। दूसरा बड़ा विषय है तर्क और भाषा की सीमाएं।
बिल्कुल। कैरल दिखाते हैं कि भाषा कितनी भ्रामक हो सकती है, सामाजिक नियम कितने खोखले। वो चाय पार्टी इसका उदाहरण है।
और तीसरा, न्याय और सत्ता। दिल की रानी दिखाती है कि बिना तर्क और सहानुभूति के सत्ता कितनी खतरनाक हो सकती है।
पर एलिस का विद्रोह ये भी दिखाता है कि ऐसी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है, कम से कम अपने मन में तो जरूर।
और इन सब के पीछे जो चीज एलिस को चलाती है वो है
जिज्ञासा। उसकी पूरी यात्रा जिज्ञासा से ही शुरू होती है और चलती है। वो रुकती नहीं, सवाल पूछती है।
ये कहानी का एक तरह से उत्सव है, बचपन की उस जानने की इच्छा का।
इस कहानी का असर भी अलग अलग लोगों पर अलग होता है। बच्चों के लिए रोमांच है, जादू है,
और बड़ों के लिए इसमें व्यंग है, दर्शन है, सामाजिक टिप्पणी है। हम एलिस के साथ सब महसूस करते हैं, हैरानी, डर, झुंझलाहट और आखिर में उसकी जीत।
और ये हमें अपनी दुनिया के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारे नियम हमेशा तार्किक हैं? क्या हमारी बातें हमेशा सार्थक होती हैं?
वंडरलैंड एक आईने की तरह है।
तो ये आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है? शायद इसलिए कि यह बड़े होने की उस अजीब सी पर सार्वभौमिक यात्रा की बात करती है।
और ये हमें कल्पना की ताकत, सवाल पूछने की हिम्मत और अपनी पहचान बनाने की जरूरत याद दिलाती है।
तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अगर एलिस आज के जमाने में होती डिजिटल दुनिया में, तो उसका रैबिट होल कैसा होता और उसका वंडरलैंड?
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।